ओम शांति। जब सृष्टि के रचनाकार नव सृष्टि का सृजन करते हैं तो अपने इस कार्य में कई बेशकीमती रत्नों का आधार लेते हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे ही एक अमूल्य रत्न आदरणीय जयंती दीदी जी हम सभी के समक्ष विराजमान है। दीदी जी, हम सभी आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। आपका जन्म सन 1949 में पुणे के एक कृपलानी परिवार में हुआ। आप जब 8 वर्ष के थे तब अपने परिवार के साथ इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए। आपने अपनी लौकिक शिक्षा इंग्लैंड में ही पूर्ण की। 19 वर्ष की अल्प आयु में आपकी मम्मा से प्रथम मुलाकात हुई। ये मुलाकात आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसके कुछ समय पश्चात ब्रह्मा बाबा से आपका प्रथम मिलन हुआ। बाबा ने आपको विशेष तौर पर विदेश की सेवाओं के निमित्त बनाया। आपके दिव्य व्यक्तित्व और उच्च धारणाओं के चलते प्राण प्यारे बाप दादा ने आपको डिवाइन एंजल के नाम से पुकारा। आप ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, साथ ही ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी यूएन की एम्बेसडर भी हैं। वर्तमान में आप मधुबन मुख्यालय में अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका के पद पर अथक रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप प्रखर वक्ता, कुशल लेखक और ऐसी अनेक प्रतिभाओं की धनी हैं। आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो आपके आशीर्वचनों से लाभान्वित होंगे। विषय है चलन और चेहरे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। बाबा की मुरली ने तो बहुत सुंदर रीति से चेहरे और चलन की बात स्पष्ट की। मुझे मालूम नहीं था कि आज की मुरली इसी टॉपिक पर ही होंगी, तो बाबा ने बहुत सहज कर दिया। बाबा ने कई बातें तो एक्सप्लेन कर ही दी। बहुत सिंपल बात है कि बच्चा जितना ही अपने माँ बाप के संग रहता, उन्हों को ही देखता, उन्हों से ही सीखता, उन्हों से ही हर प्रकार की प्राप्ति होती। और फिर लोग ऐसे ही कहने लगते, ये तो माँ बाप जैसा ही लगता, न सिर्फ चेहरे से परंतु उन्हों की चलन से भी, बड़े आयु तक भी सब उन्हों के माँ बाप को याद करते और कहते कि हाँ, आपने ठीक कदम रखा है माँ बाप के कदमों पर। तो इसी तरह से यदि कोई हमें देखे, किसको याद करे? हमारे लौकिक माता पिता को याद करेंगे, कोई और संबंधियों को याद करेंगे, या कहेंगे ये तो है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, तो ब्रह्मा बाबा के ही समान लग रहे हैं। चेहरा भी उन जैसा है, चलन भी उन जैसी है। और बाबा की प्रत्यक्षता तो हाँ, कईयों को साक्षात्कार होगा अंत के समय, और वो देखेंगे वो ज्योति बिंदु किस तरह से धरा पर आए और कैसे आकर के अपना सत धर्म की स्थापना का कार्य किया। और उस समय ब्रह्मा बाबा का भी साक्षात्कार अवश्य होगा, क्योंकि ज्योति बिंदु सिर्फ देखने से उन्हों को समझ में नहीं आएगा कि ये हम क्या देख रहे हैं। परंतु जब बिंदु को भी देखें और ब्रह्मा बाबा को भी देखें, तो कहेंगे कि हाँ, अभी समझ में आया कि वो ही निराकार ने साकार रूप धारण करके अपना पाठ बजाया। परंतु साक्षात्कार तो वो तो चाबी भगवान के हाथ में है, परंतु हम सबके हाथ में यही है कि हमें देख करके उनको हमारे नैनों से, हमारे चलन से, हर प्रकार से उनको शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की स्मृति आए। कहेंगे कि यदि रचना इतनी सुंदर है तो रचयिता कैसे होगा, तो जरूर उनों के ध्यान पर आएंगी बात कि इनों को बनाने वाला भी कौन। जैसे चित्र देख करके चित्रकार की याद आती, ऐसे ही होता है ना। चित्र अलग अलग होंगे परंतु फिर भी उनों के अंदर कुछ ऐसे निशानियां होंगी जो पहचान वाले लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ये तो चित्रकार कौन है। इसी तरह से बेशक हम एक एक का जन्मपत्री अलग, संस्कार अलग, जीवन अलग, परंतु कौन सी ऐसी बातें देखेंगे जिससे उन्हें को लगेगा कि हाँ ये तो शिव बाबा ब्रह्म बाबा के संतान है। मुझे लगता है कि आज तो बाबा ने बहुत सार में बातें बताई, बाबा एक ही बात का डिटेल में गए, कारण और निवारण का, परंतु बाकी तो बाबा जैसे तीन बिंदियां बाबा ने डिटेल नहीं बताई। बाबा ये सोचते कि अभी तो बच्चों को कई बार बता चुका हूं, या तीन खजाने जो अकाउंट में जमा करनी है उसका भी थोड़ा सा बाबा ने डिटेल बताया, बहुत ज्यादा नहीं। परंतु चेहरे और चलन का तो दो शब्दों में ही बताया, बस रूहानियत होंगी और वो नशा होगा। परंतु उसका डिटेल थोड़ा सोचते हैं, बाबा हर एक बात को सिंपल करने चाहते हैं। ये बड़े टीचर की विशेषता होती कि कितना भी कठिन सब्जेक्ट हो परंतु वो ऐसे सिंपल ढंग करके बताए जो उनके स्टूडेंट्स को समझ में आ सके। तो बाबा भी जानते हैं कि लंबी यात्रा है और अनेक प्रकार की बातें रास्ते में आएंगी, परंतु बाबा सहज करने चाहते हैं ताकि बच्चे डर न जाए और अपना कदम कदम उठाते चले। तो बाबा सहज करते हैं परंतु फिर हमें लगता है कि डिटेल में उस बात को समझ करके फिर धारण करना भी आवश्यक होता। तो मैं ये सोच रही थी कि चेहरे पर क्या क्या बातें आती, जो मन में संकल्प चलते हैं, कितना भी कोई पुरुषार्थ करे कि आपके सामने मैं आती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे संकल्पों को पकड़ परख सको, क्यों, क्योंकि मन में आपके प्रति कुछ मिक्सचर चल रहा, आपकी अच्छाई भी देख रही हूँ परंतु साथ साथ कुछ शिकायतें भी होंगी, तो मैं नहीं चाहती कि आपको पता चले कि मेरे मन में क्या क्या है। परंतु फिर भी चेहरे से पता ही चल जाता, आंखें भी बताती, आपको सामने देखते मैं अपने चेहरे को बिगाड़ लेती हूँ। मैंने तो सोचा किसी ने नहीं देखा, परंतु कहीं देखने वाले होते वो देख ही लेते, या जो जिसके प्रति मुझे संकल्प चल रहे हैं शायद उन्होंने भी मुझे देख लिया कि मेरा चेहरा कैसे है, तो उसको भी पता चलेगा, तो बाकी भी संबंध में कुछ न कुछ रुकावटें आती रहेंगी। तो मन में जो बात है वो नैनों के द्वारा और चेहरे के द्वारा तुरंत पता चलता। तो आप सोचो कि बाबा के अंदर शिव बाबा निराकार, तो उसको तो सब जानकारी है भी, परंतु फिर भी वो प्यार का सागर है, क्षमा का सागर है, तो उसके मन में कुछ और बात रहती ही नहीं। और एनीवे आप सोचो कि 8 बिलियन आत्माओं की जन्मपत्री कहानी शिव बाबा आपने बुद्धि में रखे, तो फिर तो कितनी मुश्किलात हो जाए, शिव बाबा ही भारी हो जाए, अपना कार्य कर नहीं पाए। परंतु बाबा के पास जानकारी है, तो भी बाबा उसका चिंतन नहीं करता। जो बात है वो बीत चुकी, जो और आगे आने वाली है वो भी जो होगा वो देख लेंगे, परंतु अभी मेरा फायदा किस बात में है? किसी और का चिंतन करने में नहीं, परंतु स्वचिंतन करें। तो जब स्व पर ध्यान जाता, जैसे आज बाबा ने कहा खुद को बैठ कर देखें, तो जब स्व पर ध्यान जाता तो हम सोचते हैं कि मन को किस तरह से दिल को साफ करें। मन में आज बाबा ने सिंपल तरीका बताया, बस आप शुद्ध संकल्प रखो तो आपकी चढ़ती कला उड़ती कला अपने आप ही होती रहेंगी। कोई भी बात आती है सामने तो ये न सोचे कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, परंतु यही सोचे कि जो हुआ उसमें भला है। उस घड़ी भला देखने में भी नहीं आता, परंतु निश्चय के आधार से अपने आप का टीचर बन करके अपने को ये बात समझा सकते कि हाँ सही बात है, कि मुझे अपने मन की स्थिति को श्रेष्ठ अथवा ऊंचा बना के रखना, उससे ही फिर हमारी वृत्ति पर भी प्रभाव पड़ता। जैसे हमारी स्थिति होंगी वैसे हमारी वृत्ति होंगी। ठीक कह रही हूँ? ये तो फर्स्ट लेसन ज्ञान की बातें हैं। तो बाबा को देखो, फर्स्ट लेसन के लिए ही हम लोगों को समझाने के लिए, न सिर्फ समझ में आए परंतु उस पर धारण करके चले, बाबा को अच्छी मेहनत करनी पड़ती। तो बाबा ने कहा है कि जो आपकी स्थिति है, और स्थिति बनती है अपने संकल्पों के आधार पर, तो जो आपकी स्थिति है उस अनुसार ही आपकी वृत्ति बनेंगी। तो ज्ञान का मनन चिंतन करते चलो, और फिर जिस समय अपने को देखने का चांस मिलता, चाहे सवेरे शाम, चाहे बाबा जैसे कहते हैं जल्दी जल्दी बीच बीच में, इस बात का भी फायदा उठाएं। एक सेकंड के ट्रैफिक कंट्रोल में भी आप झांक के देखो कि क्या हो रहा। बाकी जो आगे 3 मिनट चलेंगे, तो जो बात देखी समझी उस बात का परिवर्तन अब कैसे हो, वो बात भी टच होंगी। तो पहले तो अपनी स्थिति को ऊंचा बना के रखें। कोई भी गलत बात हो तो भी गलत में कुछ फायदा ही है। जैसे बाबा कहते हैं कि अब जो महाभारत के युद्ध चलेंगे उससे स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, तो लोग देख करके कहेंगे ये तो बहुत नुकसान की बात है, और बाबा ऊंच कोटि से सब बातें देख रहे हैं, तो बाबा तो कहते हैं कि इसमें ये कल्याण है, आत्माओं का दुख के बंधन से छुटकारा होगा, और जिन आत्माओं ने पुरुषार्थ किया है वो घर चलकर फिर अपने राज्य गद्दी पर आएंगे। तो यदि हम ऐसे अपनी स्थिति और वृत्ति को बनाकर रखें, कोई भी सामने बात ऐसे आए जो हमको पसंद ना आए, परंतु उसका पॉजिटिव क्या है, उससे फायदा क्या है, ये बुद्धि को खुद को ट्रेनिंग देने की बात है। आप देखेंगे कि हर बात में एक आदत पड़ जाती। आपको सर्दी में कोट पहनने की आदत पड़ जाती, और यदि एक दिन कोई भी कारण से कोट नहीं सामने है, मिल नहीं रहा है, तो आप कहेंगे मैं बाहर कैसे जाऊं, परंतु ऐसे तो अनेक लोग बाहर घूम रहे हैं कोट के बगैर, परंतु मेरी आदत बन गई है तो मुझे उसकी आवश्यकता लगती। तो ये तो एक सिंपल बात है, आप कोट पहनो ना पहनो वो तो आपकी इस जैसे आप सोचो, परंतु थोड़ी गहराई की बातें, हर बात में मैं उसका सोचूं कि इसका फायदा क्या हुआ, इसका भला क्या है, तो मुझे कम से कम 5-7 बातें तो तुरंत याद आ जाएंगी। मेरा प्लान था ये करना, परंतु अभी मैं कर ये रही हूँ क्योंकि मुझे वो संकल्प आया कि मुझे फॉलो करना है बाबा को, तो मुझे अब क्या करना है, बस मुझे अपनी स्थिति को ऊंचा बना के रखना है। सर्कमस्टेंसेस मेरे स्थिति पर दबाव न डालें, मेरी स्थिति से सर्कमस्टेंसेस में बदलाव आ जाए, हो सकता? बिल्कुल, कई बारी आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि कोई सामने आ रहा और आपको कोई पुरानी सीन याद आ रही, परंतु आप अपने को समझाते हो और उस समय जल्दी ही उस बात को चेंज कर लेते हो, मुझे तो इस आत्मा के साथ अच्छा बना के रखना है। तो जो पास्ट की बात है आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, अभी बात जो सामने व्यक्ति है आप प्यार से उनके साथ बात करेंगे ताकि फिर वो दरवाजा खुला रहे और आगे कम्युनिकेशन करने का। और यदि जो वो गलत संकल्प आया कि मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी है, तो वो संकल्प ही समय अनुसार और सख्त और कड़क बनता जाएगा। पहले जो आपने संकल्प किया चेंज कर लिया इजी, परंतु बाद में आप उसी बात को चेंज करने जाओ तो वो बात बहुत कड़क हो गई है, बहुत सख्त हो गई है, और जैसे समय बीतता जाएगा वो और कड़क होती जाएंगे। तो कोई बहुत सख्त चीज है तो उसको मोड़ लेना इतना इजी नहीं होता, बहुत मेहनत लगती। तो हमारे भी जो रिएक्शंस होते हैं, हम रिएक्ट न करें क्योंकि वो भी एक आदत पड़ जाती है रिएक्ट करने की, परंतु हम क्या करें, उस बात को समझ करके इस बात का फायदा क्या है उस बात पर सोच करके फिर उस अनुसार कारोबार चलाएं। तो वृत्ति को चेंज करना तो हमारे हाथ की बात है, स्थिति को ऊंचा रखना वो भी हमारे वश की बात है, सर्कमस्टेंसेस में बदलाव लाना हमारे हाथ की बात है। एक बात छूटेंगी दूसरी बात आएंगी, आज मेरी तबीयत की बात है, कल तबीयत ठीक है परंतु मौसम खराब है, तो कुछ न कुछ कारण बनते ही जाएंगे बनते ही जाएंगे। परंतु यदि हमने ये पक्की आदत बना के रखी मुझे श्रेष्ठ संकल्प से स्थिति ऊंची बनानी है, तो फिर कोई भी समय जो भी सीन आती है तुरंत ही, जैसे स्क्रीन पर कोई बात फ्लैश आ जाती है ना, तो आपके स्क्रीन पर भी माइंड के स्क्रीन पर तुरंत एक बात फ्लैश होंगी कि बाबा ने इसके लिए क्या कहा है, बाबा मेरे से क्या चाहता है, तो फिर वृत्ति तक भी बात नहीं पहुंचेंगी। जो उस समय स्थिति है स्थिति काम करके उस बात को बदल देंगे और फिर मेरा व्यवहार उस आत्मा के साथ बहुत मीठा रहेगा और आगे के लिए संबंध भी बहुत अच्छी तरह से मजबूत रहेगा। संबंध में कभी भी क्रैक आता है फूट आती है तो बहुत समय तक चलता, मानो कि किसी भी चीज में उसमें वो फूट आ जाए चाहे थोड़ी सी भी हो, परंतु आप उसको तुरंत ठीक कर लो। कहीं आज कल एडहेसिव्स वगैरह मिलते हैं जिससे वो बात फिट हो जाती है फिर दोबारा, तो आप जल्दी उस बात को ठीक कर लो तो वो आदत कुछ नहीं बनेंगे, परंतु आप छोड़ दो और बार बार यही संकल्प आता रहे तो आपके माइंड को भी डिस्टर्ब करेगा परंतु दूसरे तक भी वो पहुंच जाएगा और फिर और आगे हमारा संबंध क्या होगा क्या मालूम। परंतु कोई बात हो जाती जल्दी में हम उसको चेंज करके बिल्कुल अपनी वृत्ति को शुद्ध बना कर रखें, तो वृत्ति से फिर हमारी दृष्टि भी बदल जाती और दृष्टि बदलने से संस्कृति बदल जाती कल्चर, और फिर कृति भी बदल जाती, सृष्टि भी बदल जाती। तो हर बात में हम ये सोचे कि फायदा क्या हुआ, क्योंकि हर बात में कुछ न कुछ फायदा छुपाई हुआ होता। आपने ये अनुभव करके देखा होगा ना, उस समय बात पसंद नहीं आती क्योंकि हमारे मन पसंद बात नहीं है, परंतु थोड़े समय के अंदर उस बात का असली रूप हम जानने लगते हैं, तो फिर बात को वृत्ति को चेंज कर सकते। परंतु कई बार उस सत्यता क्या है वो हमारे सामने ही नहीं होती। आजकल संसार की तो यही हालत है, तो उस हिसाब से तो बात मेरे तक पहुंचे या न पहुंचे, परंतु मुझे अपनी स्थिति को बहुत पॉजिटिव रखना है, ये हमारा पुरुषार्थ रहे। तो सीखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। बाबा की यूनिवर्सिटी का एक बहुत मुख्य एग्जाम्पल ये है कि जो भी व्यक्ति ज्ञान सुनता, उसकी बुद्धि का पॉजिटिव चलना, सोच चलना शुरू हो जाता। ऐसे नहीं कि 10 दिन के बाद, 1 मास के बाद या 6 मास के बाद, नहीं, ये सीन आई है, मुझे अब क्या करना है, बुद्धि की लाइन क्लियर है, क्लीन है, तो बाबा की व्यू को टचिंग आएंगे कि मुझे क्या करना है, और उस अनुसार करेंगे तो उसका फायदा भी देखेंगे। तो बाबा जो कहते हैं कि चेहरे को ऐसे बना के रखो जिससे बाबा की प्रत्यक्षता हो, तो वो तो ब्रह्मा बाबा को कईयों ने देखा, शायद बहुत करके इस हॉल में जो अभी सभा बैठी है उन्होंने नहीं देखा, परंतु कहानियां भी सुनी है, चित्र भी देखे हैं। तो आपको चित्रों से क्या लगता? चित्रों से तो मुझे यही लगता कि ऐसा पवित्र, ऐसा शुद्ध, ऐसी पावरफुल पर्सनालिटी वाला संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता, और वो भी सारे विश्व के लिए, न सिर्फ हम सब के लिए प्रेरणादायक, परंतु सारे विश्व के लिए वो प्रेरणा देने वाला। और आपको आश्चर्य होगा, लंदन में शुरू से ही जब हम बाबा का फोटो रखते थे, और दादी जानकी को तो आप कहीं जानते हैं, दोनों आपको मालूम है कि वो तो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए उसका जी जान था, और ब्रह्मा बाबा के लिए अत्यंत प्यार था। और जब पूना में दादी रहती थी तभी बहुत करके सेंटर्स पर बाबा का चित्र कम ही होता था, जब अपने कमरे थे पीछे के वहां पर हो वो अलग बात है, पब्लिक में था त्रिमूर्ति का पिक्चर था, और बाकी और सब चित्र जो बाबा ने बनाए उन दिनों में वो सब थे। परंतु ब्रह्मा बाबा का फिर आपको दूसरा चित्र नहीं मिल सकता होगा, क्यों? क्योंकि जो स्कूल्स होते हैं उनकी सिस्टम अनुसार जिसमें धर्म की बातें सिखाई जाती है वो अलग, और फिर जो सेक्युलर होता है वो अलग। तो आजकल तो किस तरह का सिस्टम है आप जानते ही हैं, परंतु ब्रह्मा बाबा को देखते दादी सबको कहती थी कि ये हमारा ग्रैंडफादर है, तो उसको संकोच कभी नहीं होता था कि बाबा का चित्र सामने है, तो कोई भी पूछेगा क्या ये आपका गुरु है, नहीं ये तो हमारा मीठा बाप है। तो बाबा को देख करके बाबा के नैनों को देखो, बाबा से दृष्टि लो, बेशक कहेंगे कि चित्र है एक स्तूल, परंतु जब बाबा से दृष्टि लेते हैं आपको ऐसे लगेगा कि बाबा के मस्तक में शिव बाबा ज्योति स्वरूप आपके साथ मुलाकात कर रहे। तो ब्रह्मा बाबा ने इतना प्यार से बाबा को दिल में रखा, अपने नैनों में रखा, जो कि फिर बाबा को देख करके बाबा की याद ना आए, बाबा को देख करके शिव बाबा की याद आए। तो उन्होंने इतने अपने मन को सब बातों से डिटैच कर लिया था और हर एक को अपना समझ करके उनकी कल्याण की बात हमेशा देखता रहा, इस बच्चे का कल्याण किस बात में है। तो हमारे नैन भी बाबा का लाइट तब दिखा सकेंगे, बाबा की प्रत्यक्षता तब कर सकेंगे, जब हमारे पास भी इस प्रकार का अभ्यास चलेगा, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मुझे क्या करना है। ये तीन बातें याद करने से आपके चेहरे में एक अलौकिक रौनक आ जाएंगी। इतनी स्वच्छता, इतनी शुद्धता, इतनी श्रेष्ठता, हर बात में बिल्कुल एक्यूरेट। तो नैनों द्वारा भी, दृष्टि द्वारा भी, अपने मुख द्वारा भी बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते, परंतु मेन तो है चेहरा और चलन, तो ही बाबा की प्रत्यक्षता होंगी। आप लोग जानते हैं कि कितने गुरु लोग हैं, कई अच्छे, कई इतने अच्छे ना, सब प्रकार के हैं आजकल। परंतु जो अच्छे भी होंगे, उन्होंने औरों को कितना आप समान बनाया है, वो दूसरा प्रश्न है। अभी रिसेंटली एक छोटा सा संगठन था जिसमें लीडर्स थे, रिलीजियस लीडर्स, तो वो हमें बता रहे थे कि जो हमारा पूर्वज थे उन जैसे अभी जो भी गति पर आए हैं वो नहीं है, वो खुद ही बता रहे थे। बाबा की कमाल ये, जो बाबा ने न केवल 350 बहनों को तैयार किया जो बाबा का साक्षात्कार कराए, और सब उन्हों को देख करके, जिन्हों को आज हम दादियां कहते, उन्हों को देख करके अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा मिलती कि हम भी अपना जीवन ऐसे बनाएं, तो क्या हमें देख करके औरों को यह संकल्प आता कि भगवान ने इन्हों की जीवन कितनी ऊंची बनाई है, हम भी अपने जीवन ऐसे ऊंची बनाएं। इस सभा में तो मैं समझती जो दीदी लोग हैं वो तो दूसरे कार्य में है अभी, परंतु आप दीदियों से कभी बातचीत करो तो वो आपको बताएंगे कि हम लोगों ने दादियों को देख करके सोचा कि हमारे जीवन ऐसे बने। तो नेक्स्ट जेनरेशन जो है, और जो नेक्स्ट जेनरेशन जो है, उन्हों के द्वारा भी ऐसे ही सबको अनुभव हो। परंतु ये तो बाबा की कमाल थी कि न सिर्फ एक को तैयार किया, अनेकों को तैयार किया। एक बुक है समथिंग बियॉन्ड ग्रेटनेस, जो दो अमेरिका की बहनों ने इकट्ठे मिल करके लिखा है, इंग्लिश में है, शायद अमेजोन पर होगा। परंतु उसमें 90 ईयर्स की जब दादी पहुंची तो उस समय उन्होंने ये सोचा कि दादी के प्रति हम सिर्फ उसकी कहानी लिखेंगे तो वो तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, परंतु दादी से जो हमें प्रेरणा प्राप्त होती है कि न सिर्फ वो खुद अपनी स्थिति को महान बनाया, औरों को भी प्रेरणा देती, हम क्या प्रेरणा दादी से लिया है वो हम दादी से पूछे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को ऐसे बनाया। तो दादी ने उनको एक बात बोली पहले कि ग्रेटनेस तो कई लोग महान होकर के गए हैं, परंतु समथिंग बियॉन्ड ग्रेटनेस, ग्रेटनेस से भी और ऊंची बात यह है कि आप अन्य आत्माओं को भी ग्रेट बनाओ। आप ग्रेट बने अच्छी बात है, परंतु आपके द्वारा कितने और लोग भी ग्रेटनेस तक पहुंचे, इतनी महानता तक। तो दादी ने कहा कि आज तक तो किसी मनुष्य ने अनेकों को और इतना महान नहीं बनाया है, परंतु शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा लाखों लोगों के जीवन को बहुत महान बनाया है, राइट? समथिंग बियॉन्ड ग्रेटनेस तो कहेंगे कि बाबा, बाबा ने ही ऐसी प्रेरणा दी, बाबा ने ही ऐसे काम किया। परंतु अब आज बाबा कहते थे आपकी मुझे मदद चाहिए, मैं अकेला सतयुग नहीं बनाऊंगा, आप मुझे मददगार है, आप वायदा करेंगे और उस वायदे को निभाएंगे तो ही फिर सतयुग आ सकेगा। तो हमने औरों को ज्ञान सुनाया वो अलग बात, परंतु कहाँ तक हमने अपने चेहरे और चलन द्वारा उन्हों को प्रेरणा दी कि वो अपने जीवन को भी इतना ऊंच बनाए, तो ही कहेंगे कि बाबा की प्रत्यक्षता होंगी। और ये तो जब रियल बात है कि जब कोई सुनते हैं कि कितने बाबा के सेंटर्स हैं, कितने बाबा के बच्चे हैं, तो वो सोच में पड़ते हैं कि इतना बड़ा कार्य इस एक व्यक्ति ने किया। फिर उन्होंने बताते हैं कि इस एक व्यक्ति अकेले नहीं, बाप और दादा इकट्ठे ने काम किया। परंतु तभी बाबा कहते हैं कि पहले आपकी प्रत्यक्षता हो तो फिर आपके द्वारा बाबा की भी प्रत्यक्षता हो सकती। तो हम अपने चित्त को इतना क्लीन बना के रखें जो पूर्व की कुछ भी बात याद न आए। जो बाबा आज कहते थे पास्ट इज पास्ट, होली हो गई, फिनिश, फुल स्टॉप। एक तरफ बाबा ने ये मंत्र याद दिलाया, होली का मंत्र, होली हो गई, पास्ट इज पास्ट। तो दूसरी तरफ बाबा ने तीन बिंदियों को याद किया, तो एक तो आत्मा, फिर परमात्मा और तीसरा ड्रामा का फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि जो आत्मा को कमजोर करती है बातें, बाबा ने एक तो कहा कि फिक्र की बातें, आपकी बुद्धि में वो पक्का निश्चय नहीं है तो जरूर कोई ना कोई बात का फिक्र रहेगा और आप उस बात को फिर एनर्जी उसमें देते जाएंगे। निश्चय बुद्धि है, हाँ मुझे जो करना है वो राइट हो, बाकी तो ड्रामा जरूर हमारा सहयोगी है, हमारा फ्रेंड है, जरूर हमें सहयोग मिलेगा। तो कोई प्रकार की भविष्य की तो फिक्रात न हो, परंतु जो हमारा मनन चिंतन चलता है कई बार पास्ट की बातों के लिए चलता, तो उसके लिए भी बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगा लो, तो आपकी एनर्जी बहुत बच जाएंगी। तो पास से हम क्या सीखें, तो चित्त को क्लीन रख सकते। और फ्यूचर के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने अनुसार श्रीमद को चलना है, वो मेरी ड्यूटी है, फिर उसके रिजल्ट का गारंटी ठीक ही होगा। और ही बाबा ने गारंटी दी, न सिर्फ अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा होगा। तो जबकि आपके चेहरे पर फिक्र है, तो आपसे कोई पूछेगा कि क्या आपको शिव बाबा याद है, आप क्या कहेंगे? शिव बाबा तो उस घड़ी बोला हुआ है, तब तो चेहरे पर फिक्रात है। चाहे पास्ट की बातों का चिंतन, चाहे भविष्य के लिए कोई भी फिक्र, तो अपने निश्चय को बढ़ाते जाएं। निश्चय ऑटोमेटिकली नहीं अपने आप ही बढ़ता, परंतु समझ करके, जान करके निश्चय को बढ़ा सकते हैं। जब से हम बाबा के बने, कहाँ तक हमने पास्ट को पास्ट किया, दो बातों से, क्या इस बात से सीखे, जो भी बात हुई क्या उससे सीखने को मिला, और दूसरा दूसरे को दोष न देख करके मुझे अपने कारण से क्यों ये गलती हुई, ये बात हम सोचें, तो फिर उसमें जो रियलाइजेशन होंगी वो जल्दी में फिर हम और आगे बढ़ सकेंगे। बाबा ने आज कहा कि चलने की बात नहीं है, बाबा ने क्या बताया, उड़ने की बात है। होशियार स्टूडेंट्स बैठे हैं तो भी चलने से पहुंच नहीं पाएंगे मंजिल में, और चलते हैं तो कोई ना कोई आपको सामने आकर के रोक भी लेगा। उड़ना सीखेंगे तो आपको कौन रोक सकता। आप पैदल चल रहे हैं, कितने लोग, आप यहाँ से डाइनिंग रूम तक जाओ, कितने लोग आपको कहेंगे हेलो ओम शांति, आपको रोकेंगे। अच्छी बात के कारण ही हेलो करने के लिए रोकते हैं, परंतु आपका यहाँ से वहाँ तक पहुँचना डबल टाइम लगेगा, क्योंकि आप रुकते 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 जाएंगे। परंतु आप उड़ के जाओ, कोई आपको पकड़ नहीं सकता, कोई आपको अटक नहीं सकता, आप सहज ही सब बातों को पार कर लेंगे। तो पास्ट को फुल स्टॉप लगाना बहुत ही आवश्यक है, तो हम उड़ सकते, नहीं तो वो भी एक बोझ होता है जो हमें पास्ट में खींच लेता, बंधन। बाबा बंधन मुक्त के लिए भी आज बहुत अच्छी बातें बता रहे थे। बिल्कुल, हम मुक्त हो जाएं अपने कारणों से तो फिर औरों को भी हम मुक्ति के द्वार तक पहुंचा सकते हैं। आज का टाइटल याद है ना, मुक्ति दाता। अनेक टाइटल्स थे परंतु मुक्ति दाता, कहाँ तक मैं बन सकती हूँ, मैं बनी हूँ या नहीं बनी हूँ, तो ये सब अंदर का जो मनन चिंतन है वो चेहरे पर आता, तो हमारा चिंतन भी ऊंच कोटि का हो। कहते हैं कि जो साधारण व्यक्ति होता वो तो मनुष्यों के बारे में ही सोचता, इसने ये किया, उसने वो किया, ये हुआ, ये हुआ, तो उसके चेहरे किस प्रकार के होंगे, रौनक तो नहीं होंगी। और जो उससे नेक्स्ट स्टेज होती है वो मनुष्यों की बातें नहीं करते, वो सिचुएशंस की बातें करते, परंतु सिचुएशंस भी कुछ ठीक है कुछ ना ठीक है, तो जैसे वो बात होंगी वो चेहरे पर आएंगी। एक बारी कोई बहन ने कोई बात देखी, तो ये साकार बाबा के दिनों की बात है, तो उसने आकर के बाबा को सुनाया। छोटा सा परिवार था, बाबा का दरवाजा खुला होता था, तो सब समझते थे हमारा अधिकार है बाबा के पास जाने का, और था भी। तो ये बहन बाबा को बताने आई, बाबा देखो ये बहन क्या कर रही है, उसको नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो बाबा ने कहा, आपका चेहरा उसके चेहरे समान क्यों बन गया, आप सुना रहे हैं उसकी बात, परंतु आपका चेहरा उस जैसे ही बन गया अभी। क्यों? क्योंकि न सिर्फ उसने देखा कोई बात गलत थी, ठीक है, परंतु मैं साक्षी होकर के इन्फॉर्मेशन दूं, समाचार सुनाऊं, वो अलग है, परंतु उसका गलत बात देख करके मेरे मन में भी वो गलत की बातें चलने लगी, संकल्प चलने लगा, तो फिर वो मेरे चेहरे पर आ गया। तो बाबा ने कहा, पहले तो तुम अपने को ठीक करो, फिर बाबा को साक्षी होकर के बताओ कि क्या हुआ। ऐसे नहीं कि बाबा कहते हैं कि नहीं 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 ऐसे नहीं हुआ, नहीं, परंतु तुम्हारे स्थिति पर देखने से उसका क्यों प्रभाव पड़ा। तो जो बाबा कई बार कहते हैं कि दिल को, अपने मन को साफ रखो, अपने बुद्धि को क्लीन रखो, अपने चित्त में कोई प्रकार की भी ऐसे पुरानी बातें न छिपी हुई हो जो हमने रियलाइज नहीं किया है अब तक, परंतु इस आधार पर बिल्कुल उस स्वच्छता से आपके चेहरे में वो रौनक आती ही रहेंगी। आपके नैनों के द्वारा बाबा ही प्रत्यक्ष होगा, बाबा को ही सभी देख सकेंगे। तो एक तो चेहरे की बात, अंदर जो कुछ है वो सबको नजर आता। सेकंड, चलन। चलन मेरी किस प्रकार से हो, आप देखेंगे कि आजकल मनुष्यों का धर्म या नेताओं के द्वारा, जो राजनेताएं हैं, धर्म के नेताएं राजनेताओं द्वारा विश्वास क्यों टूट गया है? क्योंकि वो कहते हैं एक बात और करते हैं दूसरी बात। तो कोई होशियारी से बोलता है तो लोग आजकल समझ गए हैं, कहते हैं कि इसका बोलना तो बहुत मीठा है, बोलना तो बड़ा होशियार है, परंतु भी देखें करता क्या है। और है भी रियली ऐसे, आज का समय है कि कलयुग झूठ खंड, तो ऐसी ही व्यवहार चलता। तो हमारा फर्क कैसे उन लोगों को नजर आएगा, जबकि हमारा सोचना, देखना, बोलना और करना एक ही लाइन पर, सीधी लाइन पर होगा। कैसे? सिंपल बात है, आत्मस्मृति द्वारा। क्यों? क्योंकि जब हम खुद को भूले हुए होते और देहभान में होते तो हमारा कनेक्शन बस यहां तक है सबके साथ, एक्सटर्नल फिजिकल। जब हम आत्मस्मृति में होते, हमारा कनेक्शन मेरे साथ जो बना हुआ है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेरे अंदर आदि समय के संस्कार अभी तक समाये हुए हैं। वो कौन से? हमारे आदि संस्कार आत्मा के हैं, शांति, प्रेम, सत्यता, पवित्रता और आनंद। ये फर्स्ट लेसन की बात है और हम सब जानते हैं, मानते हैं और रियलाइज भी करते हैं कि हाँ, देवभान में ये गुण हमारे हाथ नहीं आते। ये जो वैल्यूज है आत्मा के अंदर की, वो हमारे अनुभव की बात नहीं होती। चाहते हैं शांति हो, चाहते हैं प्रेम मिले, परंतु जो वो मेरे अंदर खजाना है, जो आज भी बाबा कह रहे थे कितने प्रकार के खजाने हैं, तो पहला खजाना तो है जो आत्मा का अस्तित्व है, जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज है, उसको हम कनेक्ट करें। मैं आत्मा हूं तो मुझे याद आएगा कि मैं शांत स्वरूप हूं, मैं सत्य स्वरूप हूं। जिस समय यहां की बातों में हम फंस जाते, कारोबार करना अलग बात है, फंस जाना अलग बात है। तो जब हम अपनी बुद्धि को इतना व्यस्त कर देते हैं अनेक यहां की बातों में, तो वो जो वैल्यूज होने चाहिए जीवन में वो मिस हो जाते। तो संसार की हालत, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, साइंटिस्ट के हिसाब से कोई भी बात को आप देखो, वैल्यूज मिसिंग है। डॉक्टर के पास आप जाओ और वो आपको डरा लेगा कि आपको तो और बहुत टेस्ट कराने पड़ेंगे, क्योंकि लगता है कि कुछ बहुत सीरियस बात है। एक टेस्ट करो, दूसरी टेस्ट करो, तीसरी। डॉक्टर्स कहीं यहाँ बैठे भी हैं तो मैं सबके लिए नहीं कहती हूँ, परंतु कलयुग में जिस तरह से चल रहा है, वो आपको इतनी टेस्ट कराने की जरूरत है या नहीं वो डॉक्टर जानता है, आप तो नहीं जानते। आप तो विश्वास रख करके कहेंगे हाँ जरूरी है, परंतु है जरूरी या नहीं क्या मालूम। हर क्षेत्र में डॉक्टर का तो एक एग्जाम्पल दिया, आप वकील को लो, वकील करते हैं आपके केस को लंबा करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। क्यों? उसकी इनकम बन दी जाती है। आपके केस को जीतने में कितना टाइम लगेगा अभी क्या मालूम। विश्वास नहीं कर सकते हैं कि सच्चाई है या नहीं है, क्योंकि है ही झूठ खंड। तो सरप्राइज नहीं होता है जब झूठी बातें निकल आती, परंतु जब आप आत्मस्मृति में है तो आपके अंदर के गुण आपको अनुभव हो रहे हैं, शांत स्वरूप, सत्य स्वरूप आदि आदि। और उसमें भी अनुभव की बात है, बाबा ने रिसेंटली दो बारी कहा है अव्यक्त मूल्यों में, सोचता स्वरूप नहीं बनना है, अनुभवी स्वरूप बनना है। फर्क क्या? मैं ये सोच रही हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, परंतु अभी तक वो मैंने अनुभव की बात नहीं की है कि सचमुच किस तरह से आत्मा का आदि स्वरूप अनादि स्वरूप शांति स्वरूप है। परंतु शब्दों की बात है, यहां हम कहते हैं आत्मा का ये हम जानते हैं, परंतु साइलेंस में आप अंदर जाओ और वो आप अनुभव करो कि मैं आत्मा किस प्रकार से शांत स्वरूप हूं। एक एक जो आत्मा का आदि स्वरूप का गुण है वो आप अनुभव करेंगे, शांति स्वरूप की स्थिति का अनुभव किया, कितना समय तक चलता? बहुत समय तक उसका असर रहता। ऐसे नहीं कि अभी हम कारोबार में हैं तो हम कहेंगे अभी शांति थोड़ी करनी है, अभी तो काम करना है। नहीं, मैं हूं ही शांत स्वरूप, कारोबार भी मुझे ही करना है, परंतु मुझे अपनी शांति की स्थिति को संभाल के रखना है ताकि वो हमारा जो काम आएगा, हो सकता है मुश्किलात हो सकता है सहज भी हो, परंतु यदि कोई भी मुश्किलात आएंगे तो मेरे मन हैरान होगा, ये क्यों, ये क्या, कैसे आदाद। और यदि अभ्यास है शांति का अनुभव करने का, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, तो वो मुझे याद रहेगा, तो मेरा उत्तर कारोबार में शांति का उत्तर होगा, अशांति का नहीं होगा, हिंसक वृत्ति वाला नहीं होगा, हर प्रकार से शांति से सोच के समझ करके फिर जो एक्यूरेट बात है वो ही निकलेंगी। तो एक एक गुण को आप अनुभव करो साइलेंस में बाबा की याद के द्वारा, और फिर कारोबार में वो अनुभव आप साथ रखो और वो अनुभव आपके चलन में प्रत्यक्ष होगा। चेहरे से तो लगेगा ही लोगों को कि इसका कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है, परंतु यदि कारोबार में होते ये हम गुणों को लाते हैं तो ही कहेंगे कि हाँ, चलन से हम बाबा की प्रत्यक्षता कर सकते। आपको देख करके, आपके चलन को देख करके उनको बाबा की याद आए, ज्ञान सागर किस तरह से कार्य किया ब्रह्मा बाबा के द्वारा और दादियों के द्वारा, शांति का सागर, प्यार का सागर। आप सोचो कि भगवान के मुख्य गुण है देने, देने का दाता, कल्याणकारी। भगवान को मेरे से क्या चाहिए? एक ही चाहना कि मेरे बच्चे भी ऊंच उठे, बस। बाबा को न मेरा धन चाहिए न तन चाहिए। हाँ, बाबा कहते कि अपने मन को मेरे हवाले कर दो, परंतु बाबा के मन में यही मान भान कि बच्चे ऊंच उठे। और हम जब लोगों के व्यवहार में आते हैं हमारे चलन में क्या संकल्प रहता? मुझे इससे कुछ चाहिए, धन दौलत तो छोड़ो, वो तो बहुत नीचे की बात हो गई। आप एक दूसरे के संबंध में आते हैं वो धन दौलत के लिए नहीं आते, परंतु एक और बात जरूर सबके मन में कुछ इच्छा होती, बहुत करके, रेकग्निशन हो, अप्रिशिएशन हो, या उससे भी ज्यादा रिस्पेक्ट हो। क्या उन्हों को मालूम नहीं है कि मैंने कितना बाबा के लिए किया? कम से कम हमसे रिस्पेक्ट से तो बात करें, हमारे साथ रिस्पेक्ट से व्यवहार करे। ये तो कईयों को संकल्प आता ही होगा, हम कहेंगे ये तो नेचुरल है, मनुष्यों के लिए नेचुरल है, ब्राह्मणों के लिए नहीं। ब्राह्मण जो बाबा के बच्चे हैं, जिन्हों का बिल्कुल डायरेक्ट लाइन है भगवान के साथ, और जिसको जो चाहिए सागर द्वारा अथाह मिल रहा है, सब कुछ ले सकते। तो हमारा काम क्या है, नेचुरल है कि हम देते चले, कुछ न कुछ मेरे द्वारा मिलता रहे। हम दाता बन करके, दाता के बच्चे हम देते रहें। तो चलन में जब ये आत्मस्मृति होंगी और इंटरनल कनेक्शन अपने गुणों के साथ होगा, तो वो फिर आपके हर प्रकार से चलन में औरों को नजर आएगा। ये ईश्वर की संतान है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो उससे फिर वो आत्माएं अवश्य ही बाबा के नजदीक आएंगी। तो बाबा के हर मुरली पर मनन चिंतन भी करें, परंतु उससे भी और आगे प्रैक्टिकल अप्लाई भी करके देखें कि रिजल्ट क्या होती। थैंक यू। बाबा की याद में बैठती हैं।
प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सबेते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।
आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर हमने आपके अनुभव सहित जो प्रेरणाएं पाई हैं, सबको लाभ हुआ होगा और जीवन में धारण करेंगे।